संयुक्त राष्ट्र समाचार महबूब खान से। 21 जून के इस बुलेटिन में शामिल हैं, हम हेट स्पीच को हमेशा टक्कर देते रहेंगे, कहना है महासचिव अंतोनियो गुटेरेश का। मिर्गी की बीमारी का इलाज संभव है, बशर्ते कि समुचित मात्रा में दवाइयां दी जाएं। दुनिया भर में बढ़ते संकटों और अशांति की वजह से विस्थापितों की संख्या रिकॉर्ड ऊंचाई पर, और 21 जून को विश्व योग दिवस के मौके पर दुनिया भर में उत्साह का माहौल। हम अपने श्रोताओं को बताते चलें कि इस साप्ताहिक समाचार बुलेटिन में हम कुछ गिने चुने समाचार ही शामिल कर पाते हैं। वैश्विक परिप्रेक्ष्य वाले समाचार विस्तार से पढ़ने, सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आएं, जहां आपको बहुत सारी सामग्री मिलेगी। हमारी वेबसाइट का पता है news.un.org/hi। यहाँ हाई यानी HI हिंदी के लिए है। तो आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने नफरत फैलाने वाले संदेशों और भाषणों यानी हेट स्पीच पर नए रूप में धावा बोलते हुए सदस्य देशों का आह्वान किया है कि सभी को बहुत ज्यादा मुस्तैदी से काम लेना होगा। मंगलवार को हेट स्पीच पर संयुक्त राष्ट्र की रणनीति और कार्य योजना शुरू करते हुए उन्होंने कहा कि हेट स्पीच को अपने पैर जमाने के लिए कुछ जमीन मिल गई है, मगर इसे अब नोटिस भी मिल चुका है। हम हेट स्पीच को हमेशा टक्कर देते रहेंगे। वैसे तो ये रणनीति और कार्य योजना देखने में नए हैं, लेकिन इनकी बुनियाद सभी इंसानों के बुनियादी मानवाधिकारों का सम्मान करने और हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की आवश्यकता में निहित है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एकत्रित प्रतिनिधियों को याद दिलाते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर उस समय बनाया गया था जब दुनिया नरसंहार को बहुत बड़े और संगठित पैमाने पर देख चुकी थी। उस समय यहूदियों के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर नफरत फैलाई गई थी, जिसका परिणाम मानवता यहूदियों के नरसंहार के रूप में देख चुकी थी। अब लगभग 75 वर्षों बाद फिर से हम उन त्रासदियों से सीखे सबक को भुलाने के कगार पर हैं। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश का ये भी कहना था कि दुनिया भर में राष्ट्रवाद, नस्लवाद या अन्य किसी आधार पर होने वाले भेदभाव और असहिष्णुता, हिंसक बर्ताव, यहूदियों के विरुद्ध नफरत, मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ती देखी जा रही है। उनका कहना था कि कुछ स्थानों पर तो ईसाइयों पर भी संगठित रूप में हमले किए गए। उससे भी ज्यादा खतरनाक ये चलन है कि नफरत भरे और विध्वंसकारी विचारों को डिजिटल मंचों और तकनीकों के जरिए बहुत प्रमुखता मिल रही है। नफरत भरे और विध्वंसकारी विचारों वाले अतिवादी लोग ऑनलाइन मंचों पर बहुत सक्रिय हो रहे हैं, साथ ही अन्य लोगों को भी इसके जाल में फंसा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का कहना था कि उदारवादी लोकतांत्रिक और सर्वसत्तावादी या तानाशाही वाली व्यवस्थाओं दोनों में ही कुछ राजनीतिक नेता नफरत भरे विचार और भाषा मुख्यधारा में फैलाने में लगे हैं। साथ ही इस तरह के राजनेता नफरत भरी भाषा और विचारों को सामान्य घटनाक्रम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सार्वजनिक जीवन में खुली बहस को हतोत्साहित करके सामाजिक ताने बाने को तहस नहस करने में लगे हुए हैं। विकासशील देशों में एपिलेप्सी यानी मिर्गी से पीड़ित हर 10 में से 7 व्यक्तियों को जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं और देख रेख उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जबकि इसका इलाज महंगा नहीं है। इस वजह से उन देशों में पीड़ितों की मौत होने की आशंका विकसित देशों की तुलना में बढ़ जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की ओर से मिर्गी की समस्या पर जारी की गई ये पहली वैश्विक रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अनुसार मिर्गी पीड़ितों के लिए दवाई का खर्च एक मरीज के लिए प्रतिवर्ष महज $5 होता है, लेकिन फिर दवाइयों के अभाव में सही इलाज नहीं हो पा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार मिर्गी पीड़ितों के लिए दवाई का खर्च एक मरीज के लिए प्रतिवर्ष महज $5 होता है, लेकिन फिर भी दवाइयों के अभाव में सही इलाज नहीं हो पा रहा है। मिर्गी से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए जरूरी दवाओं के अभाव के अलावा कई गरीब देशों को विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से भी जूझना पड़ता है। कुछ देशों में तो प्रति 10 लाख लोगों पर सिर्फ एक न्यूरोसर्जन होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की डॉक्टर तरुण दुआ का कहना है कि मिर्गी के लिए इलाज न हो पाने के मामले बड़ी संख्या में सामने आते हैं, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। डॉक्टर तरुण दुआ का कहना था कि इस स्थिति से जूझ रहे 70% लोग मिर्गी के दौरों से मुक्ति पा सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें समय पर सही दवाइयां मिलें। इस बीमारी से मिथक भी जुड़े हैं और अधिकांश देशों में इसे संक्रामक बीमारी के रूप में भी देखा जाता है। यही वजह है कि पीड़ितों से दूरी बनाकर रखी जाती है और उनकी गरिमा तक को ठेस पहुंचाई जाती है। कई बार तो मिर्गी के मरीजों को दौरा पड़ने पर जूता सुंघाने की परंपरा भी देखने को मिलती है। ब्रिटेन, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में भी मरीजों को ऐसे व्यवहार का सामना करना पड़ता है। युद्ध, यातना और संघर्ष से जान बचाने के लिए साल 2018 में 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने अपनी रिपोर्ट में नए आंकड़े जारी करते हुए अपील की है कि विश्व में शांति स्थापना को संभव बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की ज़रूरत है। UN एजेंसी के प्रमुख फिलिपो ग्रैंडी ने कहा है कि हालात ऐसे हैं कि हम शांति कायम करने में असमर्थ हो गए हैं। नए आंकड़े दर्शाते हैं कि UN एजेंसी के गठन के 70 वर्षों के इतिहास में विस्थापितों की संख्या उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। शरणार्थी एजेंसी प्रमुख का कहना था कि असल में ये संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। उदाहरण के तौर पर वेनेजुएला में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता की वजह से 40 लाख से ज़्यादा लोगों ने अन्य देशों का रुख किया है, लेकिन सिर्फ 5 लाख लोगों ने ही औपचारिक तौर पर शरण और शरणार्थियों के दर्जे के लिए आवेदन किया। UN एजेंसी प्रमुख ने वेनेजुएला में पैदा हुए संकट की तुलना 2015 में यूरोप के शरणार्थी संकट से की है, जब सीरिया में हिंसा से बचने के लिए लाखों लोगों ने जान जोखिम में डालते हुए भूमध्य सागर को पार कर ग्रीस और इटली में शरण ली थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि शरणार्थियों के लिए दरवाजे खुले रहने की नीति आवश्यक है। शुक्रवार 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी अनेक कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की गईं। गुरुवार को मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों, देशों के राजनयिकों के साथ साथ अनेक अतिथियों ने भी शिरकत की। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी, योग से जलवायु परिवर्तन के समाधान में किस तरह मदद मिल सकती है। हमारे साथी सचिन गौड़ की एक रिपोर्ट।
वैसे तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति से जुड़े विषय छाए रहते हैं, लेकिन गुरुवार को यहाँ नज़ारा कुछ बदला सा था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर UN महासभा में योग सत्र का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य ये बताना था कि योग आसनों के जरिए कैसे बेहतर स्वास्थ्य, टिकाऊ जीवन शैली और प्रकृति के साथ समरसता को स्थापित किया जा सकता है। ये 5वीं बार है जब संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस बार इसकी थीम योग फॉर क्लाइमेट एक्शन यानी जलवायु कार्रवाई में योग की भूमिका रखी गई है। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने जलवायु परिवर्तन को मौजूदा समय की सबसे बड़ी चुनौती बताया है।
क्लाइमेट चेंज इज द डिफाइनिंग इश्यू ऑफ आवर टाइम and we are at a defining moment. We face a direct existential threat.
इस समारोह में मुख्य अतिथि और UN उप महासचिव अमीना मोहम्मद ने अपने संदेश में कहा कि जलवायु परिवर्तन से उपजते खतरों से निपटने में योग और उससे प्रेरित टिकाऊ जीवन शैली की अहम भूमिका है।
Yoga is known for its numerous benefits, from reducing stress to promoting physical and mental well-being and productivity. But it is also much more than that. The essence of yoga is balance, not within us, but also within our relationship with humanity, with the world.
UN महासभा में भारत सहित अन्य देशों से आए राजनयिकों, योग गुरुओं, संगीतकारों, स्कूली छात्रों और अन्य लोगों ने जनरल असेंबली हॉल में योगासन भी किए।
Which is a prayer for harmonious practice and study and for a healthy relationship between teacher and student. So you're welcome to sit with your back straight. You can close your eyes for a moment.
योग शब्द का उद्भव संस्कृत भाषा से हुआ है और इसका अर्थ जुड़ना है। ये शरीर और चेतना के मिलाप का प्रतीक है। योग दिवस पर कार्यक्रमों में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क आए लाइफस्टाइल कोच और मोटिवेशनल स्पीकर गौड़ गोपाल दास ने बताया कि योग महज शारीरिक गतिविधि या फिटनेस नहीं है, ये दुनिया में व्यापक बदलावों को लाने में भी सक्षम है।
आमतौर पर देखा जाता है कि लोग योगा को एक एक्सरसाइज, एक आसन, बस एक फिटनेस की बात मानते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से योगा एक सिद्धांत है, एक फिलॉसफी है, एक कल्चर, एक ट्रेडिशन है, जिसके जो वैल्यूज़ है, जिसके जो प्रिंसिपल्स है, उसको जीवन में लागू करने से एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा फ़र्क लाया जा सकता है, और वो केवल एक निजी लेवल पर नहीं ताकि ग्लोबल लेवल पर भी किया जा सकता है। योगा की जो फिलॉसफी है, योगा के जो सिद्धांत हैं, वो एक संवेदनशीलता सिखाते हैं कि प्रत्येक जीव के प्रति, प्रत्येक वस्तु के प्रति व्यक्ति संवेदनशील रहे, और ये संवेदनशीलता अगर हमारे प्रशिक्षण प्रणाली में, शिक्षण प्रणाली में आ जाए, तब हम चाहे वो पानी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पंछी हो, चाहे वो पेड़ हो, जो क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज हैं, उन सब के प्रति हम संवेदनशील हो जाएंगे।
संतुलन को योग का सार बताया गया है, शरीर, विचारों और भावनाओं का एक ऐसा जुड़ाव जिससे रोजमर्रा के जीवन में संतुलन स्थापित करने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, सहिष्णुता और जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटने में साझा कार्रवाई का रास्ता स्पष्ट होता है। 2030 तक टिकाऊ विकास एजेंडा के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने में भी ये एक प्रमुख कड़ी है। योग दिवस पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रमों के जरिए यही संदेश दिया जा रहा है।
ये थी सचिन गौड़ की रिपोर्ट। विश्व योग दिवस पर पूरे भारत में भी उत्साह का माहौल देखने को मिला। भारी संख्या में लोगों ने जहां जगह मिली वहीं पर योग का आनंद लिया, तो अनेक स्थानों पर संगठित तरीके से योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अनेक मंत्रियों ने भी विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। दिल्ली से हमारी सहयोगी अंशु शर्मा की रिपोर्ट।
सुबह की पहली किरण के साथ ही छोटे बड़े पार्कों में आम लोग जुटना शुरू हो गए थे। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक बड़ी संख्या में देशवासियों ने उत्साह से योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया।
सांस लेते हुए अपने हाथों को कंधों के अस्तर तक सामने उठाएं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पूर्वी राज्य झारखंड के रांची शहर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आगाज किया। हृदय के लिए योग का नारा देते हुए उन्होंने लगभग 25,000 लोगों के साथ योगासन किए। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे अपने योग के ज्ञान को फोन के सॉफ्टवेयर की तरह अपडेट करें।
आज हमारे योग को दुनिया अपना रही है, तो हमें योग से जुड़ी रिसर्च पर भी जोर देना होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम योग को किसी दायरे को बांध कर ना रखें। योग को मेडिकल, फिजियोथेरेपी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनसे भी जोड़ना होगा।
राजधानी दिल्ली में करीब 300 स्थानों पर योग के कार्यक्रम हुए। भारत में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। यहाँ कुल 56 देशों और 7 संगठनों के 250 राजनयिकों ने हिस्सा लिया। देश भर में बड़ी संख्या में योग कार्यक्रम आयोजित हुए जिनमें करोड़ों लोग शामिल हुए। गर्मी की परवाह न करते हुए लोगों ने पूरे जोश के साथ योग किया और योग द्वारा स्वस्थ रहने का संकल्प लिया।
योगा लवर्स के लिए तो ये फेस्टिवल से कम नहीं है। जैसे होली, दिवाली इंडिया में फेस्टिवल है, उसी तरह से योगा लवर्स के लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं है।
योगासन करने से जो हमारी सोच की शक्ति है उसका दृष्टिकोण बदलता है, और जो हमारी नकारात्मक सोच की शक्ति है वो हमेशा के लिए बदल जाती है।
जब योग करने लग जाते हैं तो अपने अंदर के सारे जो हमारी सोच है वो इतनी चेंज हो जाती है कि हम किसी भी तरह से जलवायु को प्रदूषित होने से बचा पाएंगे, अपने देश की, अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे।
इसको हम सभी को करना ही करना चाहिए। जैसे कि मतलब आप छोटी से सर से लेकर पैर तक, क्या कहते हैं, जितनी भी हमारी बॉडी में बीमारियां होती है, कुछ भी प्रॉब्लम है, योगा से वो सारी ओके हो सकती है।
ये शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक, ये सारे रूपों से ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें शारीरिक शांति भी मिलती है, मानसिक शांति भी मिलती है, बॉडी हम हेल्दी रहते हैं और तनाव, ये सारी चीज़ें हमें नहीं होती हैं।
योग की अंतर्राष्ट्रीय अपील और महत्व को पहचानते हुए 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी।
ये थी योग दिवस पर दिल्ली से अंशु शर्मा की रिपोर्ट। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी।